Now, because it is SLE and we know that in the SLE, other systemic involvement is also present. So, systemic inquiry can be asked before the differentials, or it can be asked after the differentials. So, in the systemic inquiry, we are going to ask about this several the systemic involvement. Beginning with the CNS, क्या इसके साथ आपको कभी सर में दर्द या बार बार सर में दर्द होता हो, चक्कर आते हों, फालिज जैसी कमज़ोरी महसूस हुए, कभी झटके लगे हों या चिड़चिड़ापन महसूस होता हो, खांसी की कोई शिकायत तो नहीं रहती, खुश्क खांसी या बलगम, साथ बलगम आता हो, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती हो या सीने में कोई दर्द होता हो. इसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ या बेतरतीब तो नहीं महसूस होती, हाथों पैरों में सूजन तो नहीं हो जाती, या कभी ऐसा हुआ हो कि सीने में अचानक दर्द महसूस हुआ, साथ पसीने आए हों और इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा हो फॉर दी इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़. रात के वक्त कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक सांस ना आने की वजह से नींद से उठना पड़ा हो? रात के वक्त जब सोते हैं तो कितने तकिए रखने पड़ते हैं? क्या इसके अलावा आपके पेट में कोई तकलीफ़ जैसे दर्द या कब्ज़ या दस्त की शिकायत रहती हो, खाना निगलने में मसला होता हो, मैदे की कोई शिकायत हो, पेशाब बार बार तो नहीं आता, झाग पेशाब में झाग रुकावट या कभी खून आया हो? इसकी एसोसिएशन क्योंकि डायबिटीज़ के साथ है तो उसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि भूख ज़्यादा लगती हो, बार बार पेशाब आता हो, तो उसमें आपने अलग से भी एसोसिएशन पूछते हैं में पूछ सकते हैं. देन आपकी एसोसिएशन जो है वो थायरॉइड डिसऑर्डर्स के साथ है तो उसमें एंडोक्रिनोलॉजिकल आपने स्पेसिफिकली पूछना होगा कि आपको सर्दी के ज़्यादा मामूल से ज़्यादा सर्दी या सर्दी मौसम में ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती, वज़न में कोई कमी महसूस तो नहीं हुई, इसके अलावा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया हो और कपड़े ढीले हो गए हों, जिसम में गिल्टियाँ महसूस होती हों या रात को पसीने आते हों फॉर द मैलेग्नेंसीज. तो ये हमने सिस्टमिक इंक्वायरी पूछी है. यहाँ पे हम इसलिए सिस्टमिक इंक्वायरी को पहले प्रेफर करेंगे क्योंकि SLE की जो हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको हमने फुलफिल करना है व्हेन वी आर गोइंग टू लेबल द केस एज अ केस ऑफ SLE. सो जब हम प्रेजेंट करेंगे अपना केस उसमें हमें ये बताना होगा कि माई प्रोविजनल डायग्नोसिस इज SLE ड्यू टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बींग फुलफिल्ड ऑफ SLE. तो उसमें आप जब कंप्लीट अपनी हिस्ट्री में पूछेंगे और एग्जामिनेशन में भी देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया आपकी कौन सी जो सिलेक्ट क्राइटेरिया उसमें कौन से फीचर्स फुलफिल हो रहे हैं उस पेशेंट में. देन डिफरेंशियल्स के बारे में फॉर द डर्मेटोमायोसाइटिस हमेशा हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या चेहरे पे हाथों पे सूजन तो नहीं आती, अंगूठियाँ तंग तो नहीं हो गई, कंघी कर लेते हैं, बग़ैर सहारे के नीचे बैठ के उठ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, पट्ठों में कोई कमज़ोरी तो नहीं महसूस होती, अगर हाँ तो कौन से पट्ठों में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है. यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी है वो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड भी हो सकती है, तो उसको हमने अपनी एग्जामिनेशन पे कंफर्म करना है कि मसल टेंडरनेस साथ में है या नहीं. तो डर्मेटोमायोसाइटिस में जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है इट इज़ नॉन टेंडर, जबकि जो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड होती है वो टेंडर होती है. तो इस तरह अपने एग्जामिनेशन पर कन्फर्म कर सकते हैं या पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको पट्ठों में कमज़ोरी के साथ पट्ठों में दर्द तो नहीं महसूस होता, उसके साथ आपके जल्द में कितने अरसे में आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, वो जो आप ड्रग हिस्ट्री में उसको कंफर्म कर लेंगे. फिर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लिए जिल्द की साख्त में कोई तब्दीली महसूस हुई हो, जैसे चेहरे पे या छाती की जिल्द की साख्त में कोई तब्दीली महसूस हुई हो, साथ जिल्द की रंगत में तब्दीली आ गई हो, आपके चेहरे के फीचर्स में कोई फ़र्क महसूस हुआ हो, जैसे नाक पतली महसूस होती हो, मुंह खोलने में दुश्वारी महसूस होती हो, उसके साथ आपकी उंगलियों के पोरों के ऊपर जख्म तो नहीं बन जाते, पट्ठों में ये जोड़ों में कोई तकलीफ़ तो नहीं महसूस होती, ये आपने सारा पूछ लेना. रेनॉल्ड्स का आपने ऑलरेडी पूछ चुके हैं. शॉगरन के लिए आपने ड्राइनेस ऑफ द आईज एंड ड्राइनेस ऑफ द माउथ और विजन के लिए पूछना होगा. फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पूछना है, जो कि तकरीबन आपने अभी तक की हिस्ट्री में अपने कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड भी पूछ चुके हैं, जिसमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं SLE. देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री के में आपने एज़ यूजुअल कि अभी तक आप इस बीमारी के लिए क्या इलाज करा चुके हैं हकीमी या डॉक्टरी, उसमें आपको क्या उन दवाइयों के नाम पता है, लगाने वाली दवाइयाँ कौन सी होती हैं और खाने वाली दवाइयाँ, सफ़ेद रंग की चावल जैसी गोलियाँ अगर कभी ली हैं तो कितने अरसे ली, जब आखिरी बार आपकी बीमारी बढ़ गई थी क्या तब आप वो गोलियां ले रहे थे, कितनी ले रहे थे और अभी कितनी गोलियां ले रहे हैं, अगर प्रेजेंटली भी वो स्टीरॉयड ले रहा था, कि आप कैलकुलेट करके बता सकें कि पेशेंट जो है वो कितने mg स्टीरॉयड ले रहा है अभी। उसके अलावा कोई और दवाई जो रोज़ाना लेते हों, हफ्ते बार लेने वाली कोई गोली लेते हों, क्या इन दवाइयों के साथ आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, जैसे जल्द पतली हो गई हो, उसके ऊपर खून की रगें नुमायाँ हो गई हों, या फिर वज़न बढ़ गया हो, चिड़चिड़ापन महसूस होता हो, मैदे में जलन महसूस होती हो, पट्ठों में कमज़ोरी और साथ में दर्द महसूस होता हो, उसके अलावा हड्डियों में तकलीफ़ महसूस होती हो, जो हफ्तेवार लेने वाली गोली है वो आपने कितने अरसे ली थी, अगर छोड़ दी थी तो कब छोड़ी थी, किस वजह से छोड़ी थी, उसके साथ कोई मसला तो नहीं हुआ था, जैसे मुँह में ज़ख़म बनना, उल्टियाँ आना, देन फिर उसके अलावा कोई और महंगे टीके तो नहीं लगे थे, क्या कभी कोई आपको ऐसे टीके तो नहीं लगे जो हफ्ते में जो 3 मतवातर दिन लगते हो और हर महीने लगते हो, इसमें पल्स का भी आपने पूछना है। देन उसके अलावा आपके इसमें आपके जिल्द के टुकड़े का कभी टेस्ट हुआ है जो 2 बोतलों में गया हो, कोई और महंगे टेस्ट कभी करवाए हों, शुआओं से कभी इलाज करवाया हो या फिर कोई और महंगे इलाज कराए हों, इस बीमारी के साथ आप कभी इस तरह तो नहीं हुआ कि जिस्म पर लाली या सुर्खी आ गई हो जिसके लिए अस्पताल में दाखिल होना हुआ, इस बीमारी की वजह से आपको अस्पताल में कितनी दफ़ा दाखिल होना पड़ा, क्या कभी इमरजेंसी में अस्पताल तो नहीं जाना पड़ा, ये सिस्टम स्क्लेरोसिस के लिए वैसे हम पूछते हैं कि कभी कभी इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको अस्पताल तो नहीं जाना पड़ा, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में, लेकिन आप पूछ सकते हैं इस तरह एडमिशन्स में। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हिस्ट्री का SLE में है वो ये है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड फीमेल पेशेंट्स में कि आपके कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे की उम्र, वो जब शुरू में पूछते हैं जो बच्चे बच्चों की पैदाइश थी वो नॉर्मल थी या ऑपरेशन से हुई थी, ऑपरेशन अगर थी तो किस वजह से, कभी कोई बच्चा ज़ाया तो नहीं हुआ, अगर बच्चे ज़ाया हुए थे तो किस उम्र पर ज़ाया हुए थे और उनकी वजह क्या बनी थी, क्या कभी बच्चों में इसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं आई थी, या कभी बच्चों में कोई दिल की बीमारी का शुबा तो नहीं हुआ था, या टेस्ट पे तो नहीं पता चला था कि उनको कोई दिल की बीमारी हुई है, हमल के दौरान इस बीमारी पर क्या फ़र्क पड़ता है और इस बीमारी की वजह से हमल पर क्या असर आता है, ये आपने ज़रूर पूछना है। माहवारी ठीक आती है अगर अनमैरिड है, या वैसे भी फीमेल से हमने पूछना है कि माहवारी आपकी ठीक आती है या नहीं। सो उसके अलावा DLQI के क्वेश्चन जो है वो यूजुअली जैसे हम पूछते हैं कि इस बीमारी की वजह से आपकी मामूल की ज़िंदगी पर क्या असर आया, आपके घर वालों के साथ ताल्लुकात, या आपके शौहर के साथ या बीवी के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं, क्या इस बीमारी की वजह से आप ज़्यादा परेशान तो नहीं रहते, परेशानी की वजह से बीमारी पर क्या असर आता है, इस बीमारी की वजह से आपने रोज़मर्रा के काम ठीक से कर लेते हैं, अगर नहीं तो हफ्ते में कितने दिन आपको काम करने से रुकावट महसूस होती है, काम करने में दिक्कत महसूस होती है, या आप काम से छुट्टी करते हैं इस बीमारी के बढ़ जाने की वजह से, और फिर सोशो इकोनॉमिक और कितना कमाते हैं, घर में कमाने वाले कितने हैं, गुजारा ठीक से हो जाता है, ताकि हमें असेसमेंट हो सके कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी और उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अकॉर्डिंगली फिर हम अपने जो मैनेजमेंट प्लान है उसको करते हैं कि हमने इस पेशेंट को उसके अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने हैं और वो पेशेंट उससे जो कंप्लाइंट भी रह सकता है या नहीं, तो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होगा।